हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 से हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ, जय बलदेवा जय जय सुभद्रा। जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय
प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयम् भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ग्रन्थः श्रीमद्भागवतम् स्कंद एक अध्याय तीन और श्लोक संख्या 19। इस अध्याय का शीर्षक नाम है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। पंचदशम वावनकम कृत्वा आगात अश्वरम बले पदत्रयम् याचमानं प्रत्यादित्सुः त्रिपिष्टपम्। पञ्चदशं वामनकम् पञ्चदशं वामनकम् कृत्वा गादध्वरं बले कृत्वा गादध्वरं बले पदत्रयं याचमानं पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिपिष्टपम् प्रत्यादित्सुस्त्रिपिष्टपम् पञ्चदशं वामनकम् कृत्वा गदाध्वरं बले पदत्रयं याचमान प्रत्यादिष्टु स्त्रिपिष्टपम् पञ्चदशं वामनकम् कृत्वा गदाध्वरं बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादिष्टु स्त्रिपिष्टपम् पञ्चदशं वामनकम् कृत्वा गदाध्वरं बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादिष्टु स्त्रिपिष्टपम् पञ्चदशं वामनकम् कृत्वा गदाध्वरं बले पदत्रयं याचमान प्रत्यादिष्टु स्त्रिपिष्टपम् पञ्चदशं वामनकम् कृत्वा गदाध्वरं बले पदत्रयं याचमान प्रत्यादिष्टु स्त्रिपिष्टपम् पञ्चदशं वामनकम् पदत्रयं याचमान प्रत्यादिष्टु स्त्रिपिष्टपम् पञ्चदशं पन्द्रहमा वामनकं बौना ब्राह्मण कृत्वा धारण करके आगात अगात गए अध्वरम यज्ञ स्थल में बले राजा बलि के पदत्रयम् केवल तीन पद याचमाना मांगते हुए प्रत्यादित्सु मन में लौटाने की इच्छा करते हुए त्रिपिष्टपम तीनों लोकों का राज्य। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। पंद्रहवें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे बलि महाराज द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे किंतु उन्होंने केवल तीन पग भूमि दान में मांगी। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं और इसी प्रकार से एक छोटा सा राज्य एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपां सागरजातं सगणानन्दताम्बितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणनन्दासि विशाखानितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवतम कक्षा में आने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, जिसको कि भागवत की महिमा में इसको भगवान का चरण कमल बतलाया गया है कि ये भगवान का चरण के समान है, जो पहला स्कंद है। हमारे भगवान के चरणों के प्रति प्रीति उत्पन्न करने वाला ये पहला स्कंद श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद का भी तीसरा अध्याय, जिसमें शुद्ध गोस्वामी पाद नैमिषारण्य के ऋषियों को के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था अवतार की कथा, उसके विषय में अवतारों की कथा के विषय में बतला रहे हैं। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुधाम की गौर निताय की। तो यहाँ पे अवतारों की कथा का वर्णन, अवतारों के गिना रहे हैं, मुख्यतः 24 अवतार ना यहाँ पे जो वर्णन है, 24 अवतारों का विस्तार से आगे वर्णन हुआ है, लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त रूप से मैं श्लोकों के द्वारा वह गिना रहे कि भगवान के अवतारों का। तो अभी जो आज का जो ये भगवान वामन का अवतार या गिना दे कि 15वां अवतार है, लेकिन इससे पहले दो श्लोकों में भगवान के तीन अवतारों का वर्णन हुआ है। वह श्लोक इसलिए नहीं यहाँ पे लिखा गया क्योंकि उसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं लिखा है, और जो हम प्रभुपाद जी के मोमेंट में उनके अनुयायी होने के नाते जिस पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं लिखा है उन श्लोकों को पे हम स्पेशल क्लासेस नहीं लेते हैं, उसके बाद वाले लिखते हैं और वो उसका अनुवाद और तात्पर्य साथ में अनुवाद और श्लोक उसको पढ़ लेते हैं। तो इससे पहले जो ये दो श्लोक है उसको संक्षिप्त रूप में मैं बताऊंगा, उसके बाद इस श्लोक की व्याख्या करेंगे। तो 17वें श्लोक में कहते हैं कि धन्वंतरम द्वादशम त्रयोदशमेव च अपाय यत् सुरानन्या मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। इसमें दो अवतारों का वर्णन किया है सुदेव गोस्वामी पाद ने। क्या कौन से? सबसे पहले धन्वंतरी अवतार का वर्णन किया कि 12वें अवतार के रूप में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, और उसके बाद त्रयोदशमेव च और 13वें अवतार के रूप में भगवान मोहिनी का अवतार धारण किए। जानते हैं भगवान धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी वहां पे जब समुद्र मंथन की कथा रघुनाथ गुरु कल बता रहे थे, समुद्र मंथन में जब भगवान ने कच्छप अवतार लिया, वो जब मथनी और मंदराचल पर्वत जब डूब गया तो भगवान उसको फिर से ऊपर उठाने के लिए और बैलेंस को बनाकर रखने के लिए एक कच्छप अवतार लिया। तो समुद्र मंथन के दौरान ही आगे चल के फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुए, अनेक द्रव्य रत्न प्रकट हुए, घोड़े हाथी ये सब चीजें प्रकट हुए। उसी के बाद यह धन्वंतरी का भी प्राकट उसी समुद्र मंथन के समय हुआ। धन्वंतरी का प्राकट, भगवान धन्वंतरी बहुत बलशाली बलि योद्धा के रूप में प्रकट हुए, बहुत तेज था उनके शरीर में, और वह हाथ में क्या लिए थे? अमृत पात्र, एक अमृत पात्र लेकर प्रकट हुए। तो विशेष करके भगवान का यह जो धन्वंतरी अवतार है यह जगत के हित के लिए हुआ है। उन्होंने आयुर्वेद की स्थापना किया धन्वंतरी भगवान ने, और यह दिखाया कि आयुर्वेद में जीवनी शक्ति है, यह प्रस्तुत किया। और विशेष करके जैसे कि औषधि और औषधि ये दो शब्द हैं। औषधि का अर्थ होता है, औषधि का अर्थ होता है अन्न चावल इत्यादि जो भी हम ग्रहण करते हैं, जो भी अन्न है इसको औषधि बोलते हैं। और औषधि का अर्थ क्या होता है, औषधि का अर्थ दवाइयां है ना। और ये औषधि औषधि से ही बनता है, जैसे कि अन्न इत्यादि इन्हीं सब चीजों का जब मिश्रण होता है तो ये औषधि बनता है ना। उनसे जब कुछ रोग होता है, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि दूध को ग्रहण करने से अगर मान लीजिए हमको कोई प्रॉब्लम हो गया है ना, पेट प्रॉब्लम हो गया दूध को पीने से या ग्रहण करने से पेट अगर प्रॉब्लम हो गया तो उसी दूध का जब मिश्रण दूसरा अवस्था छाछ है उसको पीने से पेट ठीक हो जाता है ना। तो जब ये औषधि का जब मिश्रण होता है तो ये औषधि बन जाता है। तो विशेष करके जो धन्वंतरी अवतार है भगवान आयुर्वेद की स्थापना करने के लिए और आयुर्वेद में जीवनी शक्ति है इसको प्रस्तुत करने को उन्होंने लिया। और साथ साथ में उनके हाथ में अमृत घड़ा था। बलशाली तो थे ही, सबको बहुत प्रतापवान दिख रहे थे, लेकिन उनके हाथ में अमृत पात्र उस घड़े को देखकर कलश को देखकर असुर लोग तुरंत ही उसको उनके ऊपर टूट पड़े और उन्होंने क्या किया घड़े को छीन लिया। और घड़े को छीन कर किया अमृत, क्योंकि उसका उद्देश्य ही था कि अमृत निकलेगा उससे। तो उससे पहले बहुत सारे चीजें विष भी निकला, बहुत कुछ निकला, बहुत मंथन करने के दौरान बहुत कुछ, बहुत अनेक रत्न सामग्री बहुत कुछ प्रदान हुआ, लेकिन अब अमृत नहीं निकल रहा था। और जैसे ही धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत का पात्र लेकर, तुरंत ही सारे असुर उनके ऊपर टूट पड़े और तुरंत उन्होंने, ये असुरों का स्वभाव होता है, असुर लोग हमेशा मांगने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं, छीनने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो मांगते नहीं है कभी भी, वो छीन के लेना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो जाके प्रेम से कुछ मांगे, ऐसा नहीं, उनके अंदर छीनने की प्रवृत्ति, ये आसुरी प्रवृत्ति इसको बोलते हैं। तो असुर लोग तुरंत ही भगवान धन्वंतरी के हाथ से उन्होंने कलश घड़ा छीन लिया और छीन कर क्या किए, आपस में ही लड़ने लगे। पहले मैं पीऊंगा, नहीं पहले मैं अधिकारी हूं, पहले मैं पीऊंगा है ना, यह मेरा है, मेरे लिए है, मेरे लिए बनाया गया, पहले मैं पीऊंगा, आपस में झगड़ने लगे है ना। व्यक्ति मैं ये शब्द कितना प्रेम करता है व्यक्ति इसे है ना। वास्तव में इस संसार में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो वो खुद से करता है। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, वो अपने संपत्ति से करता है, अपने पारिवारिक जीवन से करता है, अपनी पत्नी से करता है, अपने पुत्र से करता है, लेकिन वास्तव में ये सब दूसरी चीज है। लेकिन अगर सर्वप्रथम अगर कोई अपने को प्रेम करता है तो वो खुद से प्रेम करता है, चाहे कैसा भी हो, लेकिन खुद से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। महाभारत के युद्ध में भी धृतराष्ट्र भले से उसको बताया गया कि पुत्र मोह था, लेकिन पुत्र मोह होने के बाद भी वह अपना ही स्वार्थ देख रहा था। क्या बहुत मना किया गया उसको कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध होगा तो बहुत सब नष्ट हो जाएगा, उसको बहुत मना किया, विदुर ने बहुत उपदेश दिया उनको, लेकिन वह धृतराष्ट्र नहीं सुना। वो चाहता था कि यह महाभारत का युद्ध हो, भले से इसमें हमारे पुत्र मारे जाए, लेकिन जब तक ये युद्ध होगा तब तक मेरी कुर्सी बनी रहेगी, ये उसका स्वार्थ था। एक पुत्र मोह तो था ही, और उसके अंदर मैं की जो भावना थी उसके अंदर भी थी धृतराष्ट्र के अंदर। एक बार की घटना है कि अकबर बिलबर जानते होंगे दोनों को। तो एक बार यह प्रस्तुत कर रहा था बीरबल कि हर व्यक्ति अपने से बहुत प्रेम करता है ना, वो अपने खुद से प्रेम करता है, उसके बाद उसके पारिवारिक जन, उसकी संपत्ति, उसके जो भी उसका विस्तार है उससे प्रेम करता है, लेकिन सबसे पहले अपने से खूब प्रेम करता है। यह बात अकबर ने स्वीकार नहीं किया, नहीं लोग अपने देखो धन से इतना आसक्त रहते हैं, अपने इतना है तो खुद के पुत्र मोह, पुत्र से इतना आसक्त रहे, पुत्र से कितना प्रेम करते हैं, ये सब बताया कि ऐसा नहीं है कि खुद से ही व्यक्ति प्रेम करता है। तो इस बात को प्रस्तुत करने के लिए एक दिन की घटना है कि बिरबल ने इस बात को प्रस्तुत करना चाहा कि किस प्रकार व्यक्ति अपने खुद से ही प्रेम करता है, वो लगता है कि वह पुत्र मोह है उसका, बहुत गाढ़ पुत्र मोह है, वह पुत्र के प्रति बहुत आसक्त है, यह केवल दिखता है लेकिन वास्तव में उसके पीछे भी उद्देश्य रहता है मैं खुद भोग करूं। तो इसको प्रस्तुत करने के लिए कि किस प्रकार से व्यक्ति खुद से प्रेम करता है, इसको प्रस्तुत करने के लिए बीरबल ने क्या किया, एक घड़ा बनाया, कौन सा, कांच का बहुत बड़ा सा घड़ा बनाया और उसके अंदर एक बंदरिया और उसके छोटे बच्चे, अभी वही उसका जन्म हुआ था, छोटे बच्चे को उसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद क्या किया, ऊपर से पानी भरने लगे और सबको दृश्य दिखा, सभा के अंदर ही हो रहा था, सबको यह दृश्य दिखाई दे रहा था और सब लोग देख रहे थे। और बीरबल ने इसी बात को प्रस्तुत करना चाहा कि किस प्रकार व्यक्ति खुद से प्रेम करता है। तो पानी भरते गए और पानी भरते गए तो स्वाभाविक छोटा जो बच्चा था वो मतलब कि नीचे उस घड़े में था तो वो डूबने जैसा हो रहा था, तो क्या किया, तुरंत ही उसको अपने छाते से लगा लिया बंदरिया ने। तो बहुत, तो उस समय अकबर बोला देखो कितना प्रेम है उसका अपने बच्चे के प्रति। फिर उसके बाद पानी भरते गया फिर क्या किया, उसको अपने सर पे रख लिया, सकी अभी भर जाएगा पानी, सर पे रखा लेकिन फिर भी पानी भरते गया और उस बंदरिया जो थी उसकी माँ, बच्चे की माँ, और उसके जब मुख के ऊपर पानी होने लगा तो उस समय क्या किया, अपना जान बचाने के लिए उस बच्चे को नीचे फेंका, उसके ऊपर चढ़ के कूद के भाग गई। तो फिर बीरबल ने बताया कि देखो ये प्रेम है, सबसे पहले व्यक्ति खुद से अपने से प्रेम करता है। और यहाँ पे असुर लोग पहले मैं ये अमृत घड़ा छीन कर क्या बोलना, पहले मैं, मुझे पीना है, ये मेरे लिए बनाया गया, मेरे लिए आया है। और कुछ लोग जो ये जो बलशाली थे वो लोग युद्ध कर आपस में झगड़ रहे थे और कुछ जो कमजोर थे असुर वो साइड में हो गए क्या, और झगड़ तो सकते थे, झगड़ने से मिलने वाला है नहीं, अपने पास इतना शक्ति है नहीं, तो इसलिए वो जाके थोड़ा दूर हटके उपदेश दे रहे हैं, नहीं नहीं अन्याय है, ये देवताओं को भी मिलना चाहिए, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए, ये अन्याय है। क्यों, क्योंकि वो झगड़ नहीं सकते, उनके पास शक्ति नहीं था, इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया, उधर जाके नहीं नहीं अन्याय, असुर लोग भी बोल रहे थे अन्याय है, सबको मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से वह घड़े को छीनकर लेके चले गए असुर लोग। और उसके बाद देवता लोग, ऐसा नहीं कि असुर लोग लेके चले गए थे, देवता लोग उनके पीछे भागे, ऐसा नहीं, उन्होंने क्या किया, भगवान की शरणागति को स्वीकार किया, भगवान के पास गए। ये प्रस्तुत होता है कि एक भक्त जो होता है किसी भी परिस्थिति में, चाहे उसके ऊपर सुख हो चाहे दुख हो, हर एक परिस्थिति में वह भगवान की शरण को ग्रहण करता है। और यही हमको यहाँ पे सीख मिलता है कि वहां पे देवतागण भगवान की शरण, एक्चुअली में देवतागण भगवान की शरणागति में थे, इसलिए उनको हमेशा सहायता मिला, मतलब वो हार कर भी जीतते रहे, हर जगह पे भगवान अलग अलग कितने सारे अवतार ले लेके देवताओं की रक्षा की। क्यों, क्योंकि उनके भक्त थे वो, और उनके पास गए और उनसे फिर प्रार्थना की कि इस प्रकार से असुर लोग लेकर चले गए और भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही एक ऐसा रूप को धारण करूंगा जो कि सबको, इन असुरों को छल कर मैं अमृत लाकर आप लोग को प्रदान करूंगा। तब ये धन्वंतरी अवतार, और तब जाके भगवान ने जब घड़ा छीन गया तब जाके क्या है त्रयोदशमी वचन, ये मोहिनी अवतार को लिया भगवान ने। अभी ये मोहिनी अवतार के बारे में वर्णन करते हुए सुखदेव के सामने बहुत कुछ वर्णन किया है, मतलब किस प्रकार से वो कितनी सुंदर थी, उनकी सुंदरता का वर्णन बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग तरीके से उनकी सुंदरता का वर्णन बहुत सारे श्लोकों में किया है। वह इतना सुंदर थे कि उसको देखते ही असुर लोग वो अमृत भूल गए, ये उनको ऐसा लग रहा है अभी साक्षात अमृत सामने, ये अमृत कुछ भी काम का नहीं है जो घड़े में पड़ा है, इतना आकर्षित करने वाला यह रूप। ऐसा नहीं कि केवल असुर लोग ही इससे आकर्षित हुए, सारे देवता लोग भी आकर्षित हुए इस रूप से, सभी लोग आकर्षित हुए इस रूप से, लेकिन असुर लोग एकदम उस मोहिनी को एकदम कामुकता से देखने लगे, बस हमें ये प्राप्त करना है। और बोलने लगे ये इतना सुंदर अवतार है कि वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि इस संसार में अगर कोई सबसे सुंदर अगर स्त्री है तो वह कौन है, लक्ष्मी जी है, सबसे सुंदर है, स्त्रियों में उनसे सुंदर और कोई नहीं है। सबकी सारे स्त्रियों की सुंदरता को मात देने वाली है तो लक्ष्मी जी। लेकिन जब भगवान स्वयं अगर स्त्री बनते हैं तो उस लक्ष्मी की सुंदरता को भी मात कर देते हैं, फेल कर देते हैं, विष्णु स्त्री ठाकुर न करते हैं। तो भगवान ने मोहिनी अवतार इतना सुंदरता था उनका, इतना सुंदरता था वो पूरा उनके हर एक अंग प्रत्यंग का वर्णन सुखदेव गोस्वामी भागवतम में करते हैं। किस प्रकार से उसकी नाक सुंदर था, आंख बड़ी बड़ी बहुत सुंदर, पतली कमर और बहुत बहुत पूरे सुंदरता का वर्णन किया। और वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब देखते ही असुर लोग एकदम देखते ही रह गए, उनको ये भी पता नहीं कि अमृत का घड़ा अभी हमारे पास में है, देखते ही रह गए। और उसके बाद देखकर अभी वो सारे असुर झगड़ रहे थे, अभी इतना आसक्त हो गए, इतना काम मुक्ता उनके अंदर आ गया कि वो सोचे कि बस ये मोहिनी ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसको ही प्राप्त करना। और ये जो डिसीजन लेगी वो अभी तक युद्ध कर रहे थे उस अमृत को पाने के लिए, लेकिन जब मोहिनी अवतार हुआ भगवान का, वो बोले कि नहीं नहीं इसको हम देंगे, ये सही रूप में सबको बांटेगी। और इस प्रकार का प्रस्ताव वो मोहिनी के सामने रखे, मोहिनी के सामने। और भगवान मोहिनी तब वहां पे बहुत सुंदर उपदेश दिया, लेकिन वह उपदेश सबको कॉमेडी लग रहा था। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वह उपदेश इतना गंभीर था, लेकिन वहां पे सब कामुक थे इसलिए उनको कॉमेडी लग रहा था। उपदेश देते हुए कहते हैं, मोहिनी अवतार में भगवान उपदेश दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं कि आप हमारे ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हो, एक स्त्री के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हो जिसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य पंडित बताते हैं कि विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्री राज से, स्त्री और राजनीतिज्ञ के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, एक नेता के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो भगवान मोहिनी के रूप में बता रहे हैं कि एक स्त्री के रूप में मैं हूं, आप लोग कैसे विश्वास कर सकते कि अमृत घड़ा हमको दे रहा हूं, मैं बराबर बराबर बांटूंगी। लेकिन क्या बोलते हैं, कामा तुराना न भय न लज्जा, इतने काम मुक्त हो गए थे असुरगण कि उनको ना तो कोई भय और ना तो कुछ सोचना आ रहा था, ना कोई कुछ भी नहीं था उनके पास। हाँ, तो इस प्रकार से मोहिनी भगवान बहुत सुंदर उपदेश दिए, और उपदेश देते हुए इतना तक कहे कि देखो हमको दे रहे हो, और मैं क्योंकि असुर गण ने सबसे पहले पूछा था आप कौन हो करके, कौन हो करके, तो जब भगवान बोलना चालू किए तो सबसे पहले यही बोले मैं एक वेश्या हूं। भगवान बोले और सबसे पहला ही अपना परिचय दिया कि मैं एक वेश्या हूं। एक स्त्री के ऊपर तो विश्वास नहीं करना, उसमें भी एक वेश्या, वेश्या के ऊपर तो कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मान लीजिए स्त्री के ऊपर कभी भी विश्वास कर ले, लेकिन वेश्या के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मैं एक वेश्या हूं और बिचना स्वच्छंद हूं, एक तो मेरे साथ में कोई नहीं। अगर एक स्त्री, चाणक्य पंडित बताते हैं कि एक स्त्री को जब अविवाहित बाल्यकाल अवस्था में उसको अपने माता पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, और वह जब विवाहित हो जाती है तो वह पति के संरक्षण में रहती है, और फिर बाद में वह पुत्र के संरक्षण में, पति के बाद वह पुत्र के संरक्षण में रहती है। उसको संरक्षण का हमेशा जरूरत है, क्योंकि उनको अगर कोई संरक्षण करने वाला नहीं रहेगा रहेगा तब क्या होगा। भगवद गीता का श्लोक, संकरो नरकाय व कुल घना कुलस्या पतंति पित्रो लुप्त पिंडो दक्रिया, उनको अगर संरक्षण करने वाला कोई नहीं होगा तो इसी बात का भय था ना अर्जुन को कि अगर ये सब वृद्ध इतने सब लोग मारे जाएंगे इस युद्ध में तो जो स्त्रियां हैं वह विधवा हो जाएंगी, और उनके ऊपर कोई उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहेगा, और उनको देखभाल करने के लिए अगर कोई नहीं रहेगा तो संसार में उनका शोषण होगा। अब जब शोषण होगा तो अवांछित वर्ण संकर उत्पन्न होगा, और इससे कुल कुल खत्म हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, और फिर जो पितृ लोग हैं वो हमको श्राप देगा, वो श्राप देंगे। तो इस प्रकार से स्त्रियों को हमेशा, चाहे वह कितनी कौन सी भी परिस्थिति में, हमेशा उसको संरक्षण की बहुत जरूरत है, उनको संरक्षण में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर मोहिनी अवतार में भगवान बता रहे हैं कि एक स्त्री के ऊपर तो विश्वास करना, उसमें भी मैं वेश्या हूं, हमारे ऊपर कैसे विश्वास करूं, मैं स्वच्छंद घूमने वाली वेश्या हूं, हमारे ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं। फिर भी असुर लोग नहीं समझे, इतना सब एकदम बताते हुए भी भगवान क्लियर बता रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। बोला नहीं 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 आप बांटें, आप सही से बांटेंगे, आप ही सही बंटवारा कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग झगड़ते रहेंगे, आप इस घड़ा को लीजिए और आप सबको बांटिए। तो मोहिनी ने यहां तक भी कह दिया, अगर मैं ना बांटू तो कोई बात नहीं चलेगा, इस प्रकार से भी अतुलगढ़ बोल दिए। तो अगर मैं बांटते बांटते हो सकता है मैं आपको नहीं पिलाऊं, देवताओं को पिला दूं, ना ना ठीक है ठीक है, आप करिए, आप ऐसा कर नहीं सकते, अब स्वाभाविक है कि ऐसा कभी नहीं करेंगे, और आप ही पिलाइए सबको। अब इस प्रकार का रिक्वेस्ट करने के बाद फिर उसके बाद भगवान मोहिनी अवतार, उन्होंने अपने उस कलश को ले लिया, और उसके बाद फिर जब बांटना चालू किए तो कथा तो मालूम है, बांटना चालू किए फिर उसके बाद बांट रहे हैं वो देवताओं को, सबसे पहले उन्हीं लोग के पास गए, उनके पास गए और पूछे, ये देवता लोग बहुत इसके लिए आ, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा उनको पिलाने के बाद आप लोग बहुत अच्छी तरह से पिलाऊंगा पिलाऊंगी, ठीक है कोई बात नहीं ऐसा करके फिर वो देवताओं को पिला रहे देवताओं को, लेकिन देख तिरछी नजर से किसको देख रहे हैं, मोहिनी असुरों को, और एकदम वो एकदम विचलित है, मतलब उनको कुछ भी समझ, अगर किसी असुर के मन में अगर ऐसी भावना भी आता था ना कि नहीं लगता कि वहां पे पिला देंगे तो क्या सोचते थे, अभी तो हमने बोल दिया उसको कि आप जो करोगे वही 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 सब कुछ ठीक है, वही आप जो करोगे वही ठीक रहेगा, आप करने में समझता है सब कर सकते हैं, आप जैसे करना आप कर लीजिए, तो वो बोल भी नहीं पाते थे अभी, कि पहले तो बोल चुके हम कि आप करिए सब कुछ, के ऐसा विचार आया मन में तो, और बाद में कथा जानते हैं कि फिर बाद में वो राहु वो आ गया उसको उधर, फिर ये सब कथा जानते हैं। तो भगवान ने मोहिनी अवतार जो लिया या ये देवताओं को अमृत प्रदान करने के लिए यह अवतार विशेष करके लिया, और जो आज का जो प्रसंग है जो बोर्ड पे श्लोक लिखा गया है, ये जो आज का प्रश्न नहीं, इसके पहले और एक श्लोक है, वह भगवान नरसिंह देव का अवतार, चतुर्दशम नारसिंहम विभ्र दत्तम द्रमूर्जितम ददार कर जयरुराव एकाम कटक कृत्यता। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यप के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर डालता है। भगवान ने हिरण्यकश्यप को, एक कथा भी जानता, अभी नरसिंह चतुर्दशी भी था और नरसिंह भगवान की पूरी कथा आप लोग जानते ही हैं। और भगवान नरसिंह देव का विशेष प्रयोजन इस रूप को धारण करने के लिए वह क्या है, सत्यम विधातु निज वृत्तवास्तम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मना, कि भगवान का यह जो अवतार है सत्यम विधातु निज वृत्तवासितम, ओ प्रहलाद महाराज अपने भक्त प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य साबित करने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया। और आचार्य गण कहते केवल प्रहलाद महाराज के ही वचनों को सत्य नहीं, बल्कि प्रहलाद महाराज के वचनों को तो सत्य ही किया भगवान ने, और साथ साथ में हिरण्यकश्यप की भी इच्छा को सत्य किया ना। हिरण्यकश्यप कौन है, वह जय भगवान का भक्ति है ना हिरण्यकश्यप, उसकी भी इच्छा थी मैं दिन में नहीं मरूं रात में भी नहीं मरूं, और बहुत सारे कंडीशन रखा था, उसकी भी इच्छा को भगवान ने यहाँ पे पूरा किया सत्यम विधातु। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा ने वचन दे दिया था, जो भी हिरण्यकश्यप मांगा सब कुछ ब्रह्मा ने दे दिया था उसको, और ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं इसलिए उनके भी वचन को रक्षा करने के लिए भगवान ने यह नरसिंह अवतार लिया। और इतना ही नहीं, नारद मुनि के भी वचनों को सत्य करने के लिए, क्योंकि एक समय की घटना है कि जब जानते हैं कि जब हिरण्यकश्यप जब तपस्या के लिए गया, तपस्या के लिए निकला, जब उस समय क्या हुआ, कयादु के गर्भ में बालक था, यही प्रहलाद महाराज बालक के रूप में पल रहे थे, जब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया तो उस समय देवताओं ने देखा कि कयादु के गर्भ में एक बालक है जो कि इतना बड़ा असुर है, तो उसका पुत्र भी असुर ही होगा, स्वाभाविक देखा जाता कि उसका पुत्र असुर ही होगा, ऐसा उनको विचार आया मन में। तो उन्होंने क्या किया, अब भी क्या करते हैं, कयादु को किडनैप करते हैं और उसके पुत्र को अभी मार डालते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कयादु को किडनैप कर लिया, इंद्र देवताओं ने किडनैप करके लेके जा रहे थे, उस समय नारद मुनि आए और नारद मुनि क्या कर रहे हो ये, तो इंद्र बोला देखो भाई असुर का पुत्र पल रहा है गर्भ में और हम इसको मार डालेंगे, नहीं तो एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सर पे है ही और एक दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, और उस समय नारद मुनि कहते हैं कि इसके इस गर्भ में जो भी जो बालक पल रहा है उसको कभी तुम नहीं कोई भी नहीं मार सकता है इस बालक को। तो ये जो जो नारद मुनि का जो एक वाक्य था इसको कोई नहीं मार सकता है, और इस वचन को भी भगवान सिद्ध किए सत्यम विधातु प्रकट होके, उनके भी वचनों को सत्य किए और व्यास देव के भी वचनों को सत्य किए, क्योंकि व्यास देव ने श्रुतियों में लिखा है ना भगवान एक कड़ कड़ में व्याप्त है, तो भगवान ने कड़ खंबे से भी प्रकट होकर दिखाया कि मैं अंडांतुरस्त परमाणु जयंतरस हर कड़ कड़ में मैं व्याप्त हूं सब जगह। तो विशेष करके अपने भक्त की रक्षा और भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने नरसिंह में अवतार लिया। बाकी कथा आप लोगों को अभी अभी सुने कुछ दिन पहले। तो आज का जो श्लोक है उसमें 15वें अवतार की कथा सुध गोस्वामी पाद बता दे 15वें अवतार जो कि वामन, भगवान वामन का अवतार। या भगवान वामन का जो प्राकट हुआ वह भी देवताओं को ही रक्षा के लिए, क्योंकि जानते हैं देवताओं को सब कुछ छीन गया था। इसी समुद्र मंथन के बाद जब अमृत देवताओं को मिल गया, देवता लोग अमृत पी के बहुत बलशाली हो गए, उस समय क्या हुआ सारे देवता ने मिलकर असुरों को मार भगाया, सारे सारे असुरों को मार डाला। और उस समय जो असुरों के राजा बलि महाराज थे उनके टुकड़े टुकड़े कर डाला, असुरों के राजा बलि महाराज को एकदम टुकड़े टुकड़े काट के फेंक दिया देवताओं ने, क्योंकि अमृत पी के बलवान हो चुके थे इस समय, और उन्होंने असुरों के राजा बलि महाराज को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। और उस समय क्या हुआ कि बलि महाराज का जो शरीर था टुकड़े टुकड़े उसको लेकर असुर लोग आए किनके पास, शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य कौन थे, बलि महाराज के गुरु, उनके पास। और शुक्राचार्य के पास एक ऐसी शक्ति था, संजीवनी शक्ति था कि वह मृत को भी जीवित कर सकते हैं। और असुर लोग उनके पास लेके गए और उन्होंने शुक्राचार्य ने क्या किया, बलि महाराज को जीवित कर दिया। और जीवित करने के बाद वह बलि महाराज फिर से उन्होंने यज्ञ किया और उसमें ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और सबको बहुत सुंदर तरीके से यज्ञ किया, और उनके पास बहुत शक्ति फिर से प्रदान हो गया बलि महाराज के पास। और जब जैसे ही शक्ति उनको मिला तुरंत ही फिर से देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दिया, स्वर्ग के ऊपर फिर से चढ़ाई कर दिया। और उस समय इतने बलशाली थे देवता लोग, भाग के देवता लोग आदत हो कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होता भाग के तुरंत भगवान के शरण में जाते हैं, और तुरंत ही भगवान के पास गए जब देवता लोग, तो भगवान ने बोला कि इस समय कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस समय बलि बहुत बलशाली है बस। तो क्या करें देवता लोग, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं, भाग जाओ इधर से। कहां भागे, जिधर जगह मिले उधर भाग के छुप जाओ, लेकिन इधर से छोड़ स्वर्ग छोड़ के भाग जाओ, अभी ठीक नहीं, अभी समय उचित नहीं है ये। तो बोले फिर क्या, कब हम लोग की रक्षा, भगवान ने बोला समय आने पर सब होगा, अभी फिलहाल भागो, जिधर छुपना छुप जाओ। सारे देवता लोग छुप गए और फिर से बलि महाराज ने फिर से वो देवताओं को भगा दिया, निष्कासित कर दिया, और फिर से उनका राज्य छिन गया और सब इधर उधर इधर उधर बेरोजगार होके घूमने लगे। लेकिन यह कंडीशन देखकर उनकी जो माता थी देवताओं की माता अदिति, उसको बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पुत्र लोग अभी क्या खा, उनको ठीक से खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक से खाने के लिए नहीं मिला है, तो माता बहुत दुखी हो गई किसी भी प्रकार से मैं, और उसने ये प्रण लिया कि मैं किसी न किसी प्रकार से अपने बेटों को उनका राज्य वापस दिलाऊंगी। यह इच्छा लेकर वह कश्यप मुनि अपने पति जो कि एक ऋषि थे, कश्यप मुनि को बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सेवा की, और सेवा के दौरान उन्होंने जब कश्यप मुनि आए तो उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की उनके सामने, यह मांगा कि हमारे पुत्रों का राज्य वापस मिल जाए। अभी कश्यप मुनि वह युद्ध तो कर नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि असुर और देवताएं दोनों भाई भाई है ना, कश्यप मुनि की दो पत्नियां दिति और अदिति, अदिति के हुए देवता और दिति के हुए दैत्य असुर, इसलिए अभी पिता अभी उनके लिए भी दोनों पुत्र समान ही है, वो थोड़ी ना उनसे लड़ाई करके उनका उनको प्रदान करेंगे, वो कर नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक उपाय बताया अदिति को कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुमको एक जो उपाय बताता हूं और उसको उसका पालन करो और तुम्हें निश्चित रूप से तुम्हारा जो मनोवांछित जो इच्छा है वो निश्चित रूप से तुमको प्राप्त होगा। और तब जाके उन्होंने एक व्रत का व्रत को बताया जिसका नाम है पयो व्रत। पयो व्रत उन्होंने बताया कि फाल्गुन मास में और शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन तक 12 दिनों तक दूध पीकर उपवास करो और भगवान की भक्ति करो। और ये बहुत सारा उसको पढ़ेंगे तो सब उसका नियम सब विधि उस अध्याय में बताया गया है पयो व्रत के विषय में। और तब निश्चित तौर से भगवान प्रकट होंगे और तुमको तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे जो इच्छा उसकी पूर्ति करेंगे। तो कश्यप मुनि के आदेशानुसार उनके द्वारा बताए गए नियमों का पयो व्रत का पालन किया अदिति ने और कठोर व्रत का पालन किया। और तब जाके 12वें दिन द्वादशी के दिन भगवान वामन प्रकट हुए। सबसे पहले प्रकट हुए जब भगवान तो उन्होंने चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए, लेकिन बाद में फिर वह एक तुरंत ही प्रकट होने के तुरंत बाद उन्होंने एक बटु ब्राह्मण का रूप धारण किया। और ब्राह्मण का रूप जैसे ही धारण किया तुरंत ही उनका तुरंत ही संस्कार सारे संस्कार तुरंत कर दिए गए। जैसे ही भगवान ने तुरंत बटु ब्राह्मण का रूप लिया उनका सारा संस्कार, सूर्य देव ने उनको गायत्री प्रदान किया और ब्रह्मा ने उनको कमंडलू प्रदान किया और सरस्वती ने उनको रुद्राक्ष की माला दिया और कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और पार्वती ने सर्वप्रथम उनको भिक्षा दिया। और इस प्रकार सारे संस्कार उनका हुआ और तुरंत ही भगवान वामन, क्योंकि उनका जो प्राकट्य सबसे पहले जब दिति ने भगवान प्रकट हुए तो उस समय उन्होंने दिति ने यह बताया कि हमारे पुत्रों का राज्य वापस मिल जाए। तो भगवान ने बोला कि मैं युद्ध तो नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने जो प्रहलाद महाराज के वंश किसी भी वंशज को वह मारना नहीं चाहते थे और बलि महाराज ये प्रहलाद महाराज के ही वंशज थे इसलिए मारना नहीं, इसलिए बोले युद्ध तो संभव नहीं लेकिन निश्चित तौर पर मैं तुम्हारे पुत्रों का बिना युद्ध करके तुम्हारे पुत्रों का राज्य वापस दिला दूंगा। अब जैसे ही सब कुछ संस्कार हो गया बटु ब्राह्मण का और तुरंत ही वह नर्मदा के तट के किनारे पर जहां पे बलि यज्ञशाला यज्ञ चल रहा था वहां पे भगवान वामन वहां पे पहुंचे। और जैसे ही भगवान वामन पहुंचे उनका इतना तेज था कि वहां पे जितने भी बैठे वहां पे सारे ऋषि मुनि है वो चकाचौंध रह गए बटु ब्राह्मण को देखकर, इतना उसका तेज था। देखिये भगवान समस्त ऐश्वर्य है ना, भगवान समस्त षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, लेकिन अभी क्या बने हुए एक बटु ब्राह्मण भिक्षा भिखारी बने हुए मांगने जा रहे हैं। अभी भगवान समस्त पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, उनको कुछ कमी नहीं है। जैसे कि एक राजा और मंत्री ने राजा की बहुत प्रशंसा कर रहा था। प्रशंसा करते हुए कहता कि राजा आप इतने महान है, इतना मंत्री का स्वभाव है वो राजा की प्रशंसा करता है, हमेशा राजा की प्रशंसा करता है और उसकी बुद्धि हमेशा देता रहता है। बोला आप कितने महान है, आप इतनी सारी प्रॉपर्टी आपके अंडर में, इतने राज्य नगर ग्राम इतने सारे आपके अंडर में है और इतने महान है, इतने महान, उनकी महानता का खूब वर्णन किया। और फिर कहते कि आप इतने महान है कि ऐसे कार्य कर सकते हैं जो भगवान भी नहीं कर सकते। तो राजा का तो तब दिमाग सटक गया उसका, बोला ठीक है मेरी प्रशंसा किया वो ठीक है मुझे सुनना पसंद था, लेकिन यह क्या बोला तुमने कि मैं ऐसा कार्य कर सकता हूं जो कि भगवान भी नहीं कर सकते, इसको तुम प्रस्तुत करके कल तक नहीं दिखाए तो तुमको कल मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि भगवान से बढ़कर थोड़ी ना कोई हो सकता है। तो मंत्री दूसरे दिन आया और उसने बोला फिर से उस बात को प्रस्तुत करने के लिए बोला कि देखिए राजा मैं जो बोल रहा था ना कि आप इतने महान है ऐसा कार्य कर सकते हैं जो भगवान भी नहीं कर सकते, और सच में कोई मैं गलत थोड़ी ना बोला, क्योंकि आपके प्रति अगर मैं अपराध करूंगा तो आप क्या करेंगे अपने राज्य से बाहर निकाल के फेंक देंगे, और भगवान के प्रति अगर कोई अपराध करूंगा तो कहां निकाल के फेंकेंगे, तो क्या पूरा ब्रह्मांड ही उनका किधर डालेंगे, उनके ही अंडर में रहूंगा। है ना, आपके प्रति अपराध किया तो आप राज्य से निकाल के हमको निष्कासित कर देंगे, लेकिन लेकिन भगवान कहाँ निष्कासित करेंगे, सारा ब्रह्मांड सब कुछ ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचा जगत्याम, जब सारा मंडल ही उन्हीं का है, इसलिए आप एक ऐसा कार्य कर सकते जो भगवान भी नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यही कि भगवान इस सारी संपत्ति ब्रह्मांड का जो भी है सब कुछ यह भगवान की है, और ऐसे षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान इस समय बामन के रूप में एक भिखारी बनकर बलि के यज्ञशाला में पहुंचे। इसके पीछे क्या कारण है, केवल एक ही, वो भक्त भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान भिखारी का रूप भी भीख मांग के लाएंगे और उनको देंगे राज्य। युद्ध भी नहीं कर सकते लेकिन भीख मांग के ला दिए और उनको प्रदान किए। इस प्रकार से बलि महाराज जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे, बलि महाराज तुरंत खड़े हुए और उनको बहुत आदर के साथ, बटु ब्राह्मण को बहुत आदर के साथ उन्होंने बैठाया, आसन दिया और बैठाया, और उनकी बहुत प्रशंसा की, बहुत आपके आने से हमारा जो यज्ञ है यह संपूर्ण हुआ, और उस ब्राह्मण की बहुत बड़ी बहुत प्रशंसा किया। और प्रशंसा के बाद वह देखे कि यह ब्राह्मण तो है लेकिन यह किस रूप में है, भिक्षा भिक्षा प्राप्त करने के इस रूप में दिख रहा है। जरूर बलि महाराज ने बोला कि जरूर आपको कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, बताइए आपको क्या चाहिए। वर्णन आता है श्लोकों में कि बोलते हैं कि क्या चाहिए आपको, इस समय मैं बलि महाराज, बलि महाराज स्वयं बोल रहे हैं कि मैं बलि इस समय तीनों लोकों का स्वामी हूं, आपको क्या चाहिए, जो कुछ चाहिए सब कुछ मांगने आप मांग सकते हैं, और इस समय मैं देने में समर्थ हूं, मैं सब कुछ दे दूंगा आपको, जो भी मांगेंगे आप सब दे दूंगा, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। बामन देव के बोलने से पहले बलि महाराज ने उनकी उनको वेशभूषा और उनकी इच्छा को जानकर वो बोलना चालू किया कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको जमीन चाहिए, ले लीजिए सब अपना ही है, जितना चाहिए उतना ले लीजिए, धन चाहिए बहुत संपत्ति सोना चाहिए, जितना चाहिए उतना ले लो, है ना, तो थोड़ा थोड़ा नहीं, जितना चाहिए उतना ले सकते हैं, क्या घोड़े हाथी क्या चाहिए आपको, है ना, घुड़सवार आज की भाषा में गाड़ी चाहिए, कोई अगर बोले ऐसा कि आपको क्या चाहिए, अगर सोचो अगर हमारे हमारे सामने ऐसा प्रस्ताव हो कि क्या चाहिए बोलो, जो चाहिए वो ले लो, क्या चाहिए बताओ, तो एक बार हमारा जब भी हाथ निकल के साइड हो जाएगा, है ना। बलि महाराज का प्रस्ताव, आपको जो चाहिए वो लीजिए, मैं सब कुछ समर्थ हूं देने में, बताइए मांगे क्या चाहिए। फिर भी अभी तक भगवान बावन अभी कुछ बोले नहीं, तो उन्होंने सोचा, बलि महाराज ने सोचा कि ये अभी बटु ब्राह्मण ब्रह्मचारी है, अभी क्या इसको रहना रहने का कोई चिंता नहीं, और उसके बाद क्या इसको धन संपत्ति से भी उतना कुछ मतलब नहीं है ना, कुछ भी मतलब क्या, बालक ब्रह्मचारी को हो सकता है इसको कुछ स्वादिष्ट भोजन चाहिए, है ना, क्योंकि जो ब्रह्मचारी लोग होता है उनको धन संपत्ति से इतना मतलब नहीं होता है ना, इधर कहीं भी अगर पैसा पड़ा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दो चार दिन तक पड़ा रहता है, लेकिन अगर प्रसाद पड़ा रहे तो प्रियतम प्रभु हमेशा लाद करके रखते हैं, वो कब गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, उसका रख के निकले और पांच मिनट बाद भी जाए तो उसका पता नहीं चलता है, कि जो बालक ब्रह्मचारी होते हैं वो कभी भी धन संपत्ति इन सब चीजों के प्रति उनका आसक्ति उतना ही जाता, बस प्रसाद मिले तो पहले वो उसको वरीयता प्रदान करते आने दो करके। तो बलि महाराज ने सोचा कि अभी क्या इस बालक ब्रह्मचारी इसको कुछ और नहीं चाहिए लगता है, इसको स्वादिष्ट भोजन वगैरह चाहिए, तो पूछ ले क्या बताओ कौन सा व्यंजन बनाओ, सब कुछ उपलब्ध है बताओ क्या खाने के लिए चाहिए, है ना, मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं, है ना, क्या कौन सी गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज, और इतना ही नहीं केवल गाड़ी देने की बात नहीं की है, गाड़ी केवल गाड़ी देने की बात नहीं की है, बोले कि पेट्रोल खर्चे के साथ, ऐसा नहीं कि गाड़ी दे दिया और तेल भराने में परेशान रहो, ऐसा नहीं, पूरे खर्चे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब मांगना काम हो क्या चाहिए, अगर जन्माष्टमी में कोई ऐसा डोनर मिल जाए लेकिन ऐसे बहुत कम मिलते हैं। एक साम्यवादी साम्यवादी प्रचारक साम्यवादी प्रचारक वो प्रचार मतलब कि एक व्यक्ति से बात करते हुए बोल रहा था कि क्या अगर तुम्हारे आजकल के कैसे डोनर होते हैं, इसका वर्णन कर रहा हूं कि वो एक व्यक्ति से बोल रहा था वो साम्यवादी कि मान लीजिए आपके पास 2 करोड़ रुपए है तो क्या 1 करोड़ अपने मित्र को नहीं दे सकते? बोला क्यों नहीं, दे दूंगा। बोला ठीक है, मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो क्या उसमें से आप 5 एकड़ अपने किसी मित्र को नहीं दे सकते? क्यों नहीं भाई, दे दूंगा। बोला आपके पास 10 बोरी अगर गेहूं है तो क्या 5 बोरी अपने मित्र को नहीं दे सकते? बोला दे दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। मान लीजिए आपके पास 2 गाय है तो क्या आप 1 गाय अपने मित्र को नहीं दे सकते? नहीं दूंगा। अरे क्या हो गया, अभी अभी तक दे रहे थे, अभी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि 2 गाय मेरे पास है, बाकी सब कुछ है नहीं मेरे पास, तो जो है नहीं उसको देने में क्या प्रॉब्लम है? ले लो, हिमालय का सारा भूखंड अपना ही है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेट बैंक अपना ही है, ले लो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। राष्ट्रपति भवन अपना ही है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो है ही नहीं उसको देने में क्या जाता है? लेकिन ये जेब में 100 रुपया मेरा है, इस पे नजर मत मारना। इस प्रकार की विचारधारा आज के लोगों में। लेकिन बलि महाराज ऐसे नहीं थे, ऐसे डोनर बलि महाराज नहीं थे, सब कुछ समर्थ थे देने में और सारे खर्चे के साथ देने में वो समर्थ थे। और वो एक बात और स्मरण आया कि दान की सतयुग में लोग क्या करते थे, तब सतयुग था, क्या करते अपना जो भी अपने परिश्रम की जितनी भी संपत्ति है वो क्या करते थे, सब कुछ भगवान को दे देते थे, सब उनकी सेवा में लगा देते थे। लेकिन धीरे धीरे दूसरा जब युग चलवा, जब त्रेता आया तो थोड़ा कम हुआ। क्या किए फिर लोग, अपनी संपत्ति को क्या करते थे, वो नीचे एक छोटा सा गोला बनाते थे, उसको लुटाते थे, उस गोले के अंदर जो आया वो मेरा, बाकी सब भगवान का। फिर और प्रगति हुआ थोड़ा, द्वापर युग आया तो उसमें क्या लकीर खींचे, ऐसा बीच में खड़ा होके फेंकते हैं, इधर का मेरा उधर का भगवान का। लेकिन और प्रगति हुआ कलयुग जब आया तो क्या करते हैं, कलयुग में लोग दान कैसे देते हैं, सारी संपत्ति को लुटाएंगे, भगवान जो आप पकड़ लियो आपका, बाकी सब मेरा। लुटाए नहीं पकड़े कोई बात नहीं, आप तो लक्ष्मीपति है ना। क्या जरूरत है आपको। लुटाए पकड़ लिया आपका, बाकी सब मेरा। इस प्रकार की मेंटलिटी इस कलयुग में लोगों की है दान के प्रति। लेकिन बलि महाराज के अंदर ऐसा कोई भी विचारधारा नहीं था, वो सब कुछ समर्थ थे वास्तव में। यही जब भगवान वामन जब बोलना चालू किए तो सबसे प्रथम यही बोला कि हे बलि महाराज, आप सच में प्रशंसनीय हैं, आप सब कुछ देने में समर्थ हैं, क्योंकि आप तीनों लोगों के राज राजा हैं, सब कुछ देने में समर्थ है, आपको सच में कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो पूर्वज है वो बहुत महान है ना, प्रहलाद महाराज के ही वंशज। अभी प्रहलाद महाराज भी है, वयोवृद्ध के रूप में वहां पे है, कुल वृद्ध पितामह कुल वृद्ध प्रशांत, ऐसा वर्णन आया उनके विषय में, प्रशांत जो कि आत्म संयमित इंद्रियां उनकी, प्रहलाद महाराज जो कि अभी वयोवृद्ध है आपके कुल में। और उस सब उनकी प्रशंसा करते हुए बावन भगवान ने बोला बालक ब्रह्मचारी के रूप में कि मुझे और कुछ नहीं प्राप्त करना है। मुझे वहां पे बहुत सुंदर भगवान बावन ने बहुत सुंदर बलि महाराज को उपदेश दिया है। उपदेश देते हुए कहते हैं कि यावन तो विषया प्रेष्ठा त्रिलोक्या जितेन्द्रियम न शक्नुवंति ते सर्वे प्रतिपूर इतुम नृप। हे राजन, भगवान ने कहा हे राजन, जिस मनुष्य के इंद्रियां वश में नहीं रहती है उसे तीनों लोक भी प्राप्त हो जाते उसको संतुष्टि नहीं मिल पाएगा, कभी भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए कभी भी व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। अगर उसके अंदर संतुष्टि की भावना नहीं है तो उसको पूरा जितना भी सुख सुविधा प्रदान करो, कितना भी संपत्ति प्रदान करो, वो सब कुछ उसको सुख नहीं प्रदान करेगा, कभी भी नहीं, अगर संतुष्टि मन के अंदर संतुष्टि नहीं है तो। और इसलिए मन के अंदर संतुष्टि लाने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, कभी भी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। ये समुद्र की लहर, कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि समुद्र में जो लहर चल रहा है एक न एक दिन शांत हो जाएगा तो कभी भी नहीं होने वाला है, ऐसा उसका विचार गलत है। इसलिए उसको हमेशा संतुष्ट, क्योंकि ये जो धन संपत्ति है ये व्यक्ति को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो उपदेश देते हुए कहते हैं भगवान वामन की यदि मैं तीन पग भूमि से संतुष्ट न हूं तब यह निश्चित है कि सातों द्वीपों में सब द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे तीन पग भूमि केवल चाहिए। अभी बलि महाराज सोचे कि यार क्या इतना बड़ा राजा हूं मैं, क्यों मेरा नाक कटा, इज्जत का वाट लगा रहे हो, है ना। कोई बहुत बड़े धनी के पास व्यक्ति जाकर बोलेगा एक दो रुपया चाहिए तो क्या वो सोचेगा, भगा देगा उधर से, क्या मांग रहा है, हमारा इज्जत है कि नहीं उस संसार में। तो बलि महाराज ने सोचा क्या लगता है कि ये तो बटू ब्राह्मण है, लगता है उसकी बुद्धि भी छोटा है क्या, तीन पग ठीक है, तीन एक काम करता हूँ, मेरे जो और भी असुर है ना उनसे मपवा देता हूँ तीन पग। अरे तीन तुम्हारे, बोले नहीं मेरे पक्ष से चाहिए, तुम्हारे पक्ष से चाहिए, कितना बड़ा पग मांगोगे, क्या करोगे उसमें। जब जब भगवान बामन ने तीन पग भूमि मांगा उस समय शुक्राचार्य जी खड़े हो गए, बोले कि सावधान, क्या शुक्राचार्य कौन है, बलि महाराज के गुरु, सावधान किया, क्या सावधान किया कि सावधान बलि, ये जो तीन पग हुए ये कोई और नहीं साक्षात विष्णु है। बलि महाराज और कन पर, अच्छा विष्णु है, वाह बहुत अच्छी बात है ना, कभी कभी भगवान हमारे सामने प्रकट भी हो जाते होंगे, क्या पता, हमको पता भी नहीं चलता है, लेकिन वहां पे उनके गुरु शुक्राचार्य ने बता रहे हैं कि ये साक्षात विष्णु है, ये तीन पग में तुम्हारा बता भी दिया, तीन पग में वो पूरा दो पग में ही पूरा तुम्हारा सब कुछ हड़प लेगा, तीसरा के लिए जगह भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास देने के लिए। शुक्राचार्य ने उनको उपदेश दिया कि सावधान हो जाओ करके, लेकिन बलि महाराज ने इस शुक्राचार्य के भले से शुक्राचार्य ने बोला लेकिन उस पर बहुत विचार किए। वास्तव में एक शिष्य को विचारवान होना चाहिए, विचार कभी भी ऐसा नहीं कि गुरु ने बोल दिया बस तुरंत बिना विचार किए कर दो, ऐसा नहीं, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। एक गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहा था, शिष्य को बैठा के उपदेश दे रहा था कि हमेशा सात्विक आहार को ग्रहण करना चाहिए, सत्तो गुण में रहना चाहिए, सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, ऐसा बोल के वो समाधि में चले गए गुरु। और यहाँ पे फिर जब प्रसाद पाने की बात आई तो शिष्यगण विचार करने लगा, महाराज ने अभी गुरु महाराज ने बोला है कि सात्विक सत्व गुण में रहना चाहिए, सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। तभी सात्विक आहार क्या है, तो उसमें से एक बोला, दो सब आपस में बातें कर रहे हैं, उसमें से एक बोला देखो गुरु जी ने एक दिन वर्णन करते कि गाय हमेशा सत्व गुण में रहती है, उससे अच्छा सात्विक भोजन और कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए गाय को ही काट के खाते हैं और गाय को ही काट के खाना चालू किए। और गुरु जी समाधि से निकले बाहर, मूर्ख क्या कर रहे हो, मैंने तुमको बोला सतो गुण में रहो, सात्विक आहार ग्रहण करो, ये क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो तुम लोग। बोला क्या कि आपने ही बोला था सतो गुण में रहने के लिए, सात्विक आहार ग्रहण करने के लिए, तभी समझने से आपने बताया था कि गाय हमेशा सतो गुण में रहती है। फिर बाद में डांट के फिर से गुरु समाधि में चले गए, फिर से ये लोग सोचने लगे कि क्या क्या खाया। तो फिर बोला कि अभी गाय तो नहीं हो सकता, अभी और सात्विक व्यक्ति कौन सा होता था, वो गुरु को ऊपर ही नजर देखने लगे, अभी इससे बड़ा सात्विक और कोई दिख नहीं रहा है। तो कभी भी शिष्य को हमेशा विचारवान होना चाहिए। बलि महाराज यहाँ पे कुछ देर के शांत हो गए बलि महाराज, और सोच में जैसे ही उनके गुरु ने शुक्राचार्य ने बोला, क्योंकि गुरु ने बोला है, उनके गुरु ने बोला है, और गुरु के वाक्यों को कभी भी उन्होंने बोला तो कर लेना चाहिए ऐसा। लेकिन बलि महाराज ने उस समय विचार किया, क्योंकि विचार इसलिए किया क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में इनपरफेक्ट गुरु भी आ सकते हैं, इनपरफेक्ट अथॉरिटी हमारे जीवन में हो सकते हैं, इनपरफेक्ट अथॉरिटी है ना। लेकिन अगर फॉलोअर अनुयायी परफेक्ट है तो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाएगा। यहाँ पे शुक्राचार्य ने बताया और बलि महाराज ने बहुत विचार किया है, और विचार करने के बाद उन्होंने यही सोचा कि जो अनुकूल है मैं उसको स्वीकार करूंगा और जो प्रतिकूल है उसको त्याग करूंगा। और उन्होंने विचार करते हुए उनको अंदर से जो प्रेरणा आई, एक्चुअली में जो हम कोई भी जो कार्य करते हैं जो अंदर से हमको प्रेरणा प्राप्त होता है उसके चार स्तर होते हैं, वह स्तर है भय, इच्छा, कर्तव्य और प्रेम। इस चार स्तर में हम निकलकर हम कोई भी कार्य करते हैं। तो इस समय बलि महाराज ने शुक्राचार्य को बताया, देखिए अगर मैं इसको, अगर इस ब्राह्मण बटू ब्राह्मण को आप बोले सब कुछ छीन जाएगा, उसे शुक्राचार्य ने उपदेश भी बहुत दिया है, देखो कौन से समय में झूठ बोल सकते हो तुम, इस समय तुम्हारा सब कुछ लूटने वाला, इसलिए झूठ का सहारा लेके निकल सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा, मृत्यु, मान लो कोई बंदूक लेके खड़ा उस समय आप झूठ बोल के उससे अपना रक्षा कर सकते हैं। शास्त्रों में कुछ जगह कई कई जगह पर झूठ बोलने के भी संस्तुति जहां पर किया गया है। शुक्राचार्य ने उन सारे नीतियों को बता दिया बलि महाराज को कि आप निकल जाओ, ये आपका सब कुछ खत्म कर डालेगा। लेकिन फिर भी बलि महाराज ने क्या किया, शुक्राचार्य का नहीं सुना और उनको बता समझा रहे हैं कि देखिए अगर मैं इस ब्राह्मण को अगर दान नहीं देता हूं, नहीं दूंगा, तो ये क्या करेगा, हमको श्राप देगा, हमारा नरकी दशा हो जाएगा। बलि महाराज के अंदर ये जो पहला स्तर है भय, उनके अंदर भय जागृत हुआ, अगर मैं इसको दान नहीं दूंगा तो भय, हमको भय है कि श्राप देगा और हम नरकीय दशा में चले जाएंगे। तो सबसे पहला भक्ति कुछ लोग भयवश भी करते हैं, है ना, अगर नहीं करूंगा तो कुछ हो जाएगा, हर साल गणपति की पूजा करता हूं, इस बार नहीं करूंगा कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए करूंगा, है ना, कर लूंगा, इसलिए कुछ लोग भक्ति भी करते हैं तो भयवश करते हैं। लेकिन ये पूर्ण नहीं है। बलि महाराज यहां प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं भयभीत हूं कि अगर वो श्राप दे देगा तो मेरा जीवन नरकी हो जाएगा। और दूसरा है इच्छा, उन्होंने क्या इच्छा व्यक्त किया कि देखिए वो बता रहे कि इस संसार की हर एक संपत्ति वह क्षणिक है, चाहे कितना भी हमारे पास इतना प्रॉपर्टी कुछ भी हो, लेकिन ये सब क्षण भंगुर है, कुछ दिनों के बाद ये खत्म हो जाए, मृत्यु कितना साल मृत्यु समय तक चलेगा, मृत्यु पर्यंत सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको दान दूंगा, मेरी इच्छा है कि इसको अगर मैं दान दूंगा तो मैं यशस्वी बनूंगा, मृत्यु पर्यंत भी मुझे ये लोग याद करेंगे जैसे हमारे पूर्वज हुए, है ना। तो ये बलि महाराज को यश प्राप्त करने की इच्छा थी, ये दूसरा स्तर है, दूसरा स्तर बलि महाराज को यश प्राप्त करने की इच्छा। तो कुछ लोग अपना डिजायर बहुत सारे इच्छाएं लेके भगवान के पास जाते हैं लिस्ट बनाकर, ठीक है, है ना, किसी न किसी एन प्रेरण प्रकार ने किसी न किसी से प्रकार से तो भगवान के पास जा रहा है, लेकिन यह अभी पूर्ण नहीं है। और फिर बलि महाराज तीसरा स्तर की बात कर रहे हैं, ये मेरा कर्तव्य है, एक राजा होने के नाते एक ब्राह्मण को संतुष्ट करना यह मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं अपने कर्तव्य प्रेस्क्राइब ड्यूटी एक कर्तव्य का मैं पालन करूंगा। लेकिन यह कर्तव्य भी पूर्ण नहीं है, अगर हमारा कर्तव्य समझ के करेंगे उसमें प्रेम नहीं है तो वो पूर्ण नहीं है। चौथा जो स्तर है वो प्रेम का स्तर है, हर व्यक्ति को वहां तक पहुंचना होता है। कर्तव्य ये कैसे पूर्ण नहीं है, अगर मैं अपना कर्तव्य समझ के कर रहा हूं, सेवा करना मेरा कर्तव्य है, भगवान की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, भगवान के लिए प्रसाद बनाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन वह कर्तव्य भी पूर्ण नहीं है अगर उसमें प्रेम नहीं है तो, ये विचारणीय बात है। ये दो व्यक्ति थे, वो एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, उसने एक दृश्य को देखा, दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति गड्ढा खोद रहा है और दूसरा व्यक्ति उस गड्ढे को भर दे रहा है। तो ये राहगीर जो चल रहा था वो ये दृश्य को देख रहा था, ये कर क्या रहे सब, एक गड्ढा खोद रहा है और दूसरा उस गड्ढे को भर दे रहा है, तो गड्ढा खोदने का मतलब क्या हुआ। तो बहुत सोच में पड़ गया और सोचते सोचते बोला कि अभी कुछ नहीं, उसके पास ही जाके पूछते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहा है और दूसरा गड्ढे को भर रहा है। तो जाके उसने पूछा, अरे भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो, एक गड्ढा खोद रहा है दूसरा मिट्टी से गड्ढे को भर दे रहा है, गड्ढा खोदने का मतलब क्या है। तो उनमें से एक बताया, देखो एक्चुअली हम दो नहीं तीन हैं, एक का काम है गड्ढा खोदना, दूसरा का काम है उसमें पेड़ लगाना और तीसरा का काम है उसमें मिट्टी डालना, लेकिन आज पेड़ लगाने वाला व्यक्ति अब्सेंट है, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, क्या लाभ, कुछ लाभ है उससे, कुछ लाभ नहीं है। तो अगर हम कोई सेवा भी करते हैं अपना कर्तव्य समझ के करते हैं कि यहां पर हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, चाहे कोई भी सेवा हो कर्तव्य है, लेकिन अगर उसमें प्रेम नहीं है, अगर प्रेम पूर्वक नहीं किए तो वह भी पूर्ण नहीं है। इसलिए बलि महाराज प्रस्तुत करते हैं कि हमको प्रेम से करना चाहिए, प्रेम से, जब तक हम सेवा प्रेम से नहीं करेंगे, और मैं प्रेम से जीतना, या तो इस चीज में दो ही हो सकता है, या तो वो मुझे हराएंगे या तो मैं उनको हराऊंगा, लेकिन अगर मैं हराता हूं उनको तो मैं प्रेम से उनको हराऊंगा, क्योंकि वैसे हरा दूंगा तो हमको नरकी दशा भी प्राप्त हो सकती है, इसलिए मैं उनको प्रेम से प्रेम पूर्वक मैं सब उनको प्रदान कर दूंगा। और शुक्राचार्य के मना करने के बाद क्यों, कौन से परिस्थिति में शुक्राचार्य का त्याग किया बलि महाराज ने, क्योंकि जब भगवान सामने है और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, ऐसा उपदेश दिया, उस समय पे बलि महाराज ने अपने गुरु का भी त्याग कर दिया है ना। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी हमको बुद्धिमान होना चाहिए, कभी कभी हो सकता है कि हम गलत जगह पे फंस गए हो, गलत गुरु को स्वीकार किए हो, है ना। कभी कभी संसार में लोग कभी कभी आ भी जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत लोग से दीक्षा लेके आ जाते हैं, हमने तो ये दीक्षा ले लिया, अभी क्या थोड़ी दूसरा गुरु बनाऊंगा। फिर उनको समझाना चाहिए कि देखिए बताना चाहिए कहाँ से लिए है, बुद्धिमान व्यक्ति बता सकता है ना कि वो कहाँ से लिए है, कौन है, संप्रदाय क्या है। क्योंकि संप्रदाय के बिना अगर कोई गुरु को स्वीकार करता है तो सब व्यर्थ, कोई काम का नहीं है। उनको समझा सकता है कि वो बोलता है कि अब तो मैंने कर लिया, अब थोड़ी ना दूसरा स्वीकार कर, क्यों नहीं, गलती हर एक व्यक्ति से होता है। उनको समझा सकते हैं कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी 12वीं कक्षा का एग्जाम है उसका देने जा रहा है, गलती से वो 11वीं कक्षा के कक्षा में बैठ गया, जब उसको प्राप्त हुआ, उसको पता चला कि ये 11वीं की क्लास है, तो क्या करेगा, जाके उठ के 12वीं में चला जाएगा। तो गलती से आप उधर चले गए, कोई बात नहीं, अब ये इधर आ जाओ। तो इस प्रकार से परफेक्ट, इनपरफेक्ट अथॉरिटी और परफेक्ट फॉलोअर, इसके अंदर की जो परफेक्ट अथॉरिटी इनपरफेक्ट अथॉरिटी परफेक्ट फॉलोअर, वो परफेक्ट फॉलोअर बलि महाराज थे। अगर फॉलोअर परफेक्ट हो, अगर गुरु इनपरफेक्ट हो, तो भी उसका उद्धार हो जाता है, लेकिन बुद्धिमान होना चाहिए। यहाँ पर शुक्राचार्य के, और शुक्राचार्य ने श्राप भी दे दिया तुम नरक में जाओगे, क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो था कि अगर इसका सब कुछ छीन गया तो मेरा क्या होगा, है ना। अभी मैं बताया ना, मेरा 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 मैं से लोग कितना सकते हैं, मेरा क्या होगा। तो इस प्रकार से बिना सोचे विचारे उन्होंने, बलि महाराज ने भगवान को तीन पग, और भगवान फिर तो जानते हैं किस प्रकार से वह विकराल स्वरूप लिए और वह सब कुछ दो पग में ही माप के रख दिया, और तीसरा पग रख मापने के लिए जगह ही नहीं बताता, और तुरंत ही गरुड़ को आदेश दिया उसको बंदी बनाओ, और तुरंत ही गरुड़ पास से बंदी बन गए बलि महाराज। उस समय भगवान ने पूछा बलि महाराज से भगवान ने पूछा कि अब ये तीसरा पद मैं किधर रखूं। भगवान ने यह भी प्रस्तुत किया इससे कि ये संसार के जीवों, तुम्हारे पास कितना भी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं चाहूंगा तो एक क्षण में तुमको भिखारी बना दूंगा। इसलिए उस पर कभी भी अगर कुछ हमारे पास है तो उनको उसको सेवाओं में लगाना चाहिए, कभी भी उसको लेकर घमंड, हमारे पास कुछ है तो घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान अगर चाहे तो एक क्षण में व्यक्ति को भिखारी बना देंगे। भिखारी देख लेना, एक क्षण में बलि तीनों सब कुछ खत्म करा, दो पग में माप लिया पूरा, तीसरा रखने के लिए जगह नहीं। लेकिन बलि महाराज जो कि आत्मसमर्पण के आचार्य हुए, उन्होंने भगवान को बोला कि मान लीजिए कि वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रभु आपने तो सब कुछ मेरा छीन लिया, आप ये बताइए कि संसार में धनी बड़ा है या उसका धन बड़ा है, कौन बड़ा है, धनी बड़ा है। क्योंकि धनी रहेगा तो धन तो आते जाते रहेगा, तो अगर धनी बड़ा है तो अभी तो मेरे को नहीं, आप अभी तीसरा पैर आप अपना चरण मेरे सर पे रखिए, और आत्मसमर्पण के आचार्य बने बलि महाराज। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इनपरफेक्ट अथॉरिटी, गुरु के इनपरफेक्ट होने के बाद भी शिष्य का उद्धार हुआ। जैसे कि देखते हैं कि वहां पे कृष्ण लीला में आता ब्राह्मण पत्नियां, है ना। अभी पत्नियों का, पत्नी का क्या कर्तव्य है, वो पति के संरक्षण में रहे, है ना, वो जो कहे उसके ही बातों को माने, सब कुछ करे उसके संरक्षण में। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण पत्नियां ने अपने पति का भी उसको तिरस्कार कर दिया, क्यों, क्योंकि उस समय कृष्ण ने भेजा था कि जाओ कुछ भोजन लेके आओ, उस समय उनके पति जो थे यज्ञ कर रहे तो मना कर दिए, नहीं नहीं हम नहीं देंगे, अभी यज्ञ चल रहा है। लेकिन पत्नियां ने अपने पति के बातों को तिरस्कृत करके भी उनको दिया, क्यों, क्योंकि वह कृष्ण के विषय में सुनी थी, ये वह पूर्ण पुरुषोत्तम है, सुनी थी, इसलिए अपने पति के भी बातों को तिरस्कृत किया और करके वह उनको दिए प्रसाद। और इतना नहीं, वो कंस और अक्रूर जी कंस के सेवा में थे, लेकिन समय आने पर उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया, जो कि भागवत में बहुत प्रशंसनीय है। तो इस प्रकार से इनपरफेक्ट, भले से हम इनपरफेक्ट अथॉरिटी के अंतर में हैं, लेकिन अगर हमारा विचार, अगर हमारा अगर सब कुछ हम ठीक रूप से जानते हैं, विचारवान हैं, अगर एक मूर्ख शिष्य की तरह नहीं रहे तो निश्चित तौर पर भगवान हमको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य, हम क्या है, इन परफेक्ट है ना, इन परफेक्ट है, क्या क्या हरकत करते रहते हैं, इन परफेक्ट ही है ना। लेकिन हमारे जो गुरु है वह परफेक्ट है, परफेक्ट अथॉरिटी और इन परफेक्ट फॉलोअर, ये हमारा कैटेगरी है, परफेक्ट अथॉरिटी, इन परफेक्ट फॉलोअर। प्रभुपाद जी ने कैसे कैसे लोग को भक्त बनाया, विदेश में जाके विदेशी लोग को प्रचार किया, ऐसे ऐसे लोग को भक्त बनाया प्रभुपाद जी ने, है ना। वो प्रभुपाद महाराज की एक विशेष कृपा है, जो कि एक शुद्ध भक्त है, जिनकी बड़ा हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम तो परफेक्ट शिष्य नहीं है, लेकिन एक ऐसे गुरु के शरण में है कि निश्चित तौर पे हमारा उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम परफेक्ट अथॉरिटी के अंडर में रह रहे हैं। न्यूजीलैंड में नया नया सेंटर एक हुआ था, प्रभुपाद जी नया नया सेंटर करके वो चले गए थे, वहां पे भक्तों की सेवा करके, मतलब दे के, थोड़ा छोटा सा सेंटर चल रहा था और प्रभुपाद जी गए, चले गए। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद जी वापिस आए, क्या चल रहा है इधर करके, तो प्रभुपाद जी आए, बस देखे बहुत सुंदर सुंदर जगन्नाथ जी का दर्शन किया, और प्रभुपाद जी ने तुरंत दंडवत डाला, और दंडवत डाला, उठ के हाथ जोड़, अरे गौर नहीं था कहां से आ गए। प्रभुपाद जी सोचते, मैं तो दंडवत डाला, जगन्नाथ जी थे, अभी गौर नहीं थे कहां से आ गए। प्रभुपाद जी तुरंत बुलाए, क्या है, अभी तो मैंने दर्शन किया था, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, अभी गौर नहीं था कहां है। तो आगे भक्तों ने, एक्चुअली प्रभुपाद जी हम लोगों ने घूमने वाला अल्टर बनाया है। प्रभुपाद जी क्या घूमने वाला अल्टर, अल्टर भी कभी घूमने वाला बनाया जाता है क्या? हाँ वो क्या है, वो घूमते रहता है अल्टर, और सब कभी गौर नहीं था, कभी जगन्नाथ जी का दर्शन, वैरायटी। प्रभुपाद जी देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान ऐसा थोड़ी ना कि किसी भी तरह से भगवान को रख दो, उनको एक जगह स्थापना करके सही तरह से पूजा करना चाहिए। और भगवान ने, प्रभुपाद जी ने भगवान से प्रार्थना किया, देखो ये लोग इनपरफेक्ट हैं, इनपरफेक्ट है, अभी जानते नहीं है, थोड़ा आप संभाल लेना। प्रभुपाद जी ने भगवान से प्रार्थना की है, और फिर बताए, फिर उन भक्तों ने, मतलब इनपरफेक्ट थे लेकिन वो लोग परफेक्ट बन गए। क्यों? क्योंकि एक शुद्ध भक्त के अंडर में रह रहे हैं, है ना, शुद्ध भक्त हैं इसलिए परफेक्ट हो गए। और इंडियन जो थे उन्हीं लोग को देखकर, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया था पहले भारत में प्रचार करने के लिए, लेकिन वो सुने नहीं, फिर विदेश में गए, वहां के लोगों को प्रचार किया, वहां के देख के लोग सोचते कि वो मेड इन अमेरिकन, है ना, आकर्षित हुए लोग, है ना। एक बार प्रभुपाद जी मायापुर टेम्पल से कलकत्ता आ रहे थे, सरों से कलकत्ता आ रहे थे, कलकत्ता आ रहे थे, उस समय उनके एक भक्त ड्राइविंग कर रहा था, प्रभुपाद जी बाजू में बैठे थे और तीन भक्त लोग पीछे बैठे हुए थे, और सब विदेशी ही थे, और विदेशी थे, और प्रभुपाद जी, अचानक क्या हुआ, उस टैक्सी का हॉर्न फेल हो गया, अचानक हॉर्न फेल हो गया उसका, तो जो भक्त ड्राइविंग कर रहा था वो बहुत टेंशन में हो गया। विदेशी लोग को कुछ गड़बड़, मतलब बहुत टेंशन हो जाता है, इंडियन को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, हॉर्न क्या चक्का निकलने तक वेट करते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन विदेशी लोग को थोड़ा कुछ गड़बड़, मतलब बहुत टेंशन में हो जाते थे। प्रभुपाद जी आप टेंशन क्यों लो, चिंता मत हो, आराम से एकदम बहुत अच्छा ड्राइविंग करो, ठीक से टेंशन मत लो, हॉर्न चला गया तो क्या दिक्कत है। प्रभुपाद जी ने उसके टेंशन को देखकर पीछे वाले भक्तों को बोला कि एक काम करो, मेरा चम्मच और थाली दो, और प्रभुपाद जी ने चम्मच और थाली दिया, और टैक्सी के हाथ बाहर निकालकर थाली ऐसा पकड़े, टन 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 ऐसा कर लिए, बोले कि जब हॉर्न बजाना हो तो बताना, मैं बजाऊंगा, टेंशन मत लो। सब लोग सोच रहे, प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं आप, क्या थाली चम्मच बाहर रखे, कुछ नहीं, देखो अभी कल से देखना आके इस कलकत्ता में, पूरा पूरे शहर में कल देखना कि कोई हार नहीं यूज नहीं करेगा, कल से थाली और चम्मच बजाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विदेशी बैठे हुए हैं, और लोग सोचेंगे नया टेक्नोलॉजी आया हुआ है, चलो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एन प्रकार प्रभुपाद जी ने लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान ही करते रहे, और आज उनकी कृपा से लोगों को, है ना, एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, एक बार प्रभुपाद जी जयपुर आए हुए थे अपने विदेशी शिष्यों के साथ, जयपुर आए हुए थे, और जयपुर में उनको एक व्यक्ति ने पूछा, लेक्चर दे रहे थे, एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपका कैसा चल रहा है सब कुछ, मतलब विदेशों का प्रयास, बहुत अच्छा चल रहा है, देखो लेक्चर देते देते दे, 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 बोले बहुत अच्छा चल रहा है, देखो ये विदेशी शिष्य है ना, छोटी सी एक बच्ची थी, ऐसे चाह रहे, इसको ईशोपनिषद के सारे श्लोक आते हैं। तो तुरंत प्रभुपाद जी बोलो, उठ के खड़े होकर बताओ, सुनाओ। और हुआ एक्चुअली क्या था, उसको केवल पांच ही श्लोक मालूम था। प्रभुपाद जी ने बोला पूरा जानती है, बोलो चलो खड़े होकर। वो तो कांपने लगी, प्रभुपाद जी बोले पूरा इधर बोलेंगे। एक बोला, दो बोला, तीन बोला, चार बोला, पांचवा जैसे ही बोला प्रभुपाद जी बोला बस करो, हो गया बस, इसका मतलब सब कुछ जानती है। तो व्यक्ति ने बोला कि एक व्यक्ति ने बोला हाँ प्रभुपाद जी बराबर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उच्चारण बराबर नहीं है, विदेशी लोग का थोड़ा उच्चारण उल्टा सीधा होता है थोड़ा उच्चारण। तो प्रभुपाद जी ने बोला वो तो उतना भी करे, तुम क्या कर रहे हो, देखो तुम तो करो कुछ इंडियन हो, तुम तो करो, वो तो उतना भी किया, वो तो प्रयास कर रहे, उतना भी किया, तुम क्या कर रहे हो। तो अलग अलग टेक्निक यूज करके प्रभुपाद जी ने एक परफेक्ट गुरु होने के नाते अलग अलग तरीकों से लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़े, और आज तक उनकी कृपा से आज तक ये मोमेंट उसी प्रकार से लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़ रहा है। तो एक परफेक्ट गुरु के रूप में प्रभुपाद जी हमको, हमारा हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको इस प्रकार के गुरु प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से सब कुछ बलि महाराज ने हमको समर्पित कर दिया, और भगवान बामन ने वो राज्य प्राप्त करके वो देवताओं को दे दिया, और फिर ये कथा बावन की कथा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम।